Shanti. Good morning. नए साल की शुरुआत में आज बाबा ने ऐसी मीठी वाणी चलाई है जो हम ब्राह्मण बच्चों को एक बहुत क्लियर लक्ष्य दिया है बाबा ने कि बच्चे आपस में रहकर रूहानी स्नेह होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। आज की वाणी ऐसी है कि एक स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी लेसन है जिसमें बाबा ने तीन प्रकार के फैमिली टाइप्स का वर्णन किया है। एक है ईश्वरीय फैमिली टाइप, और ईश्वरीय फैमिली टाइप के लक्षण क्या है। दूसरा है असुरी फैमिली टाइप, और तीसरा है दैवी फैमिली टाइप। तीन अलग अलग है। हमने पुरानी दुनिया छोड़ा है तो पुरानी दुनिया छोड़ना माना पुराना व्यवहार, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, जो देहभान वश था उसको छोड़ा है ना। आप देखेंगे जब बाबा ने तो पहले आपको ही पहचाना ना, आपने थोड़ी बाबा को पहले पहचाना, पता ही नहीं था भगवान कहां थे। लेकिन बाप ने एक एक बच्चे को, एक एक डायमंड को ढूंढ के जागृत किया, और जब वो जागृति हुई तब पहचान, अरे यही वो है जो मैं इतने जन्मों तक ढूंढ रही थी, वो मेरे सामने आया है। तो वो जो एक सोल कॉन्शियस लव पैदा होता है आत्मा और परमात्मा के बीच में, हाँ मैं वही आत्मा हूं जो शिव की संतान हूं, इतना मीठा प्यार है ये, अविनाशी प्यार है ये, रूहानी प्यार है ये। जो हमारा दिल आसुरी फैमिली टाइप में रह करके विकार में जाके, जो हमारे दिल इतने सारे लोगों के बीच में टूटा हुआ था, वो ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय स्नेह उस दिल को जोड़ता है, एक बना देता है। और जब दिल का अंदर के टुकड़े टुकड़े एक बन जाते हैं तब मतभेद खत्म हो जाती है। डिफरेंस तो होता है, इनका विचार का डिफरेंस है, इनका विचार, इनका काम करने का तरीका है, लेकिन वो डिफरेंस मन में नहीं लेके आना है, मन में भेदभाव पैदा नहीं होना चाहिए। तो जब हम एक बन जाएंगे ईश्वर की स्नेह की ताकत से, तभी एक राज्य में आ सकेंगे और श्रेष्ठ पद। और बाबा ने आज कई बातें, संपूर्ण प्यार क्या है, रूहानी प्यार संपूर्ण तरीके से क्या है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि गॉड्स लव इज अनलिमिटेड, लेकिन अनकंडीशनल नहीं है। बाबा कंडीशन डालते हैं, कौन से कंडीशन डालते हैं बाबा, कौन सा कंडीशन डालते हैं बाबा? श्रीमत का पहला कंडीशन है बच्चे, श्रीमत पे चलो, मेरी आज्ञा का पालन करो। दूसरा, दैवी गुण धारण करो। तीसरा, मन वचन कर्म से सेवा करो, तब आप बाबा के दिल तख्त पे चढ़ेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हाँ बाबा हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपके बच्चों के साथ इतना प्यार नहीं है, ये ऐसे वैसे है ना, इसीलिए ऐसे नहीं कह सकते हैं। देखो, बीज के साथ जब प्यार होता है तो ऑटोमेटिकली पूरा वृक्ष को प्यार मिलता है ना, हर एक पत्ते को ही ऑटोमेटिकली पानी का प्यार मिलता है। तो आज बाबा की वाणी बहुत गहरी है, कई ऐसी ऐसी गुह्य बातें बाबा बता रहे हैं। और आज बाबा ने बहुत स्ट्रिक्ट रूप से भी बताया है कि जो लून पानी रहेंगे आपस में व्यवहार में, उनका पद भी भ्रष्ट होता है, उनको सजा भी मिलती है। तो अभी अंदर इतने सारे प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं, तो ये मुरली एक चिटचैट भी है लेकिन एक आईना भी है, खुद के दिल को चेक करना कि किसी के प्रति मेरे दिल में कुछ छोटी मोटी बात रही है क्या। दिल को सॉफ्ट बना दो, वृत्ति को सॉफ्ट बना दो। तो बहुत ही आज धारणा युक्त मुरली है, बहुत अटेंशन से आज बाबा की वाणी सुनेंगे सभी। तो आज 2 जनवरी 2026 की वाणी है और बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? अभी नोट कीजिए, 4-5 बातें बाबा ने बताई है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर, अपनी दिल से पूछो, पहला, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूं, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा खीर खंड रहता हूं, हमारी आपस में एक मत है। बड़ी बात है ये, हमारी आपस में एक मत है। पांचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं। हमने दादियों को देखा है जब मीटिंग में बैठते थे, हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट था, हर एक अथॉरिटी थी, लेकिन आपस में इतना रिस्पेक्ट होता था हर एक की बातों के लिए। तो मीटिंग करते करते, विचार को मानते मानते, एक्सेप्ट करते करते एक मत हो जाते थे, क्योंकि बाबा बीच में है ना, कोई अपने अभिमानवश या अपने स्वार्थवश कुछ बातें नहीं करते थे। बाबा के कार्य, बाबा के बच्चों के लिए जो चीज बेनिफिशियल है उसके लिए बात करते थे। तो इसीलिए बाबा ने इतने सारे प्रश्न पूछे हैं। गीत, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है, यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है और शिव बाप है। कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। आज बाबा ने शब्द इंग्लिश में यूज किया है। उन दिनों में 68 करीबन एक बहुत मशहूर सोशियोलॉजिस्ट थे भारत में, MS गोर। तो उन्होंने बहुत एक पेपर लिखा था फैमिली टाइप्स के ऊपर, मूल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है। तो आज बाबा हमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के फैमिली टाइप्स का परिचय करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है असुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। कितनी मीठी मीठी शिक्षा देते बाबा। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहां से भरना है। ईश्वरीय फैमिली संगम युग के समय पे होता है। दादी हमको कभी कभी सीक्रेट बात सुना देती थी। तो एक बारी क्वेश्चन आंसर के रूप में दादी ने बताया कि मैं आपको सीक्रेट बताती हूं, ये परिवार संगम युग पे केवल नाम मात्र के लिए है। ये एक हमारी एक प्रैक्टिस ग्राउंड है जिसमें हम अपनी दिव्य गुणों की प्रैक्टिस एक दो के साथ कर सकते हैं। तब तो आगे देवी परिवार में इतनी रूहानी स्नेह प्यार होगा ना। गुणों के आधार से प्यार बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं, एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहां से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा, अभी ये बात अंडरलाइन कीजिए, जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। कंप्लीट नॉलेजफुल माना कंप्लीट लविंग। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहां तो राजाएं है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं, मेरा तेरा। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाए खाकर फिर पास होंगे। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाए खाकर फिर पास होंगे। कभी कभी कोई मीटिंग में बैठता होता है ना, मैं अपना विचार पहले सुना दूं, किसी के विचार सुनने से पहले मैं अपना डाल दूं पहले, इतना पुशअप करता है अपनी बातों को। वो ही चीज, अरे भाई शांति, धैर्यता रखो, अपने विचारों को रोको, इनकी बात पहले सुनो, स्वीकार करो, फिर आपकी बात वो स्वीकार करेंगे ना, तभी एक मत हो सकता है। इसलिए बाबा कहते, ऐसे मतभेद में आने वाले सजाए खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप। आसुरी फैमिली टाइप की निशानी क्या है, इसको नोट कीजिए, आज थोड़ा चिंतन करें। आसुरी फैमिली टाइप में अधीनता होती है, आकर्षण होती है, एक्सपेक्टेशन होता है, पॉजेसिवनेस होता है। तो यहां है ईश्वरीय फैमिली टाइप, भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं, आपस में मान सम्मान देते, एक दोनों को आगे बढ़ाते हैं, बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डेटी गवर्नमेंट है, 100% प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करनी है। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते हैं, दूसरों को कराते रहते हैं। जागृति की ये निशानी है कि औरों को भी जागृत करते हैं। इसलिए बाबा कहते कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते हैं, दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। ये बात अंडरलाइन करो, ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह की तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है, फिर सजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पा लेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीर खंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? नहीं, कभी कभी जब स्वमान की कमी होती है ना संबंध में, आपने खुद अपनी वैल्यू को महसूस नहीं किया है, तो औरों से दुख लेते हैं, ये मेरा मान नहीं करता है, मेरे साथ ऐसे वैसे व्यवहार करता है। फिर जब कोई आपके दिल से उतरता है, उसके लिए मान नहीं रहता है, तो आप उसकी बात भी नहीं स्वीकार करेंगे, इग्नोर करेंगे उसकी बात। ये दिल में छोटी छोटी बातें ऐसे ब्लॉकेज बना देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहां ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। जो ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी चलन बहुत रॉयल होती है, सभी को सम्मान देते हैं। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, और दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना, एक धागे में तो हम सभी पिरोए हुए हैं ना, ईश्वर के बच्चे। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या कर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि यह चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। देखो, एक है बाप की पहचान, लेकिन समय की पहचान भी चाहिए ना। क्योंकि संगम युग कल्याणकारी युग है। यही युग में सभी की उन्नति हो सकती है। तो हम जो पुरुषार्थ करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तो उन्नति उन्नति है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालीग्रामो मुझे याद करो, हे सालीग्रामो मुझे याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनने चाहते हो ना, चाहते हो, पुकारते आए हो, अभी तो मैं आया हूं। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने हैं। रावण ने वैशालय बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशिष्ट है। भारत सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी था, निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं। ये पहली निशानी है, जब वाम मार्ग में गिरे, विकार में गिरे, तो माथा क्या करते थे, झुकाते थे, अधीन बन गए थे। अधीनता के कारण, सबसर्वियंस के कारण कर्म संबंध, कर्म बंधन बन गए। मजबूरी आ गई ना, इसके बिना से कैसे मैं जीऊंगी, इसका सहारा चाहिए। तो बाबा कहते हैं, भारत सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी था, निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। यह किसको पता नहीं है, पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। मेन कंडीशन ये है, अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनो। मां मेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। अब देखेंगे ना, लौकिक फैमिली में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, वो फैमिली में फमिलियरिटी बहुत होती है, जैसे वैसे किसी के साथ बात करना, डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन ईश्वरीय फैमिली में हरेक को पुरुषार्थ करना है श्रेष्ठ बनने के लिए, व्यवहार में ऊंचा बनाने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। यह समझना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तो मात पिता और हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख गनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं, तुम हमारी फैमिली बेशक हो, तुम हमारी फैमिली बेशक हो, भगवान खुद कहते हैं। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द बाबा ने यूज किया, एक्यूरेट फैमिली क्यों बोला सोचो। ओरिजिनल माँ बाप साथ में है और हमारा व्यवहार आपस में श्रीमत अनुसार, श्रीमत पे हर एक चलता है। देखो आज बाबा ने दो बातें मुरली में उठाई है, एक है फैमिली शब्द, दूसरा है कुल। ठीक है, फैमिली में इतने रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुल के नियम मर्यादा होते हैं, कुल का कोट ऑफ आर्म्स होता है, एक कुल का एक श्रेष्ठ कार्य होता है, कर्तव्य होता है, कुल में डिसिप्लिन होती है, फैमिली में ब्लड कनेक्शन का महत्व होता है, कुल में ब्लड कनेक्शन का महत्व नहीं होता है, नियमों का महत्व होता है। तो हमारी फैमिली एक्यूरेट क्यों बनी है, क्योंकि हम वो ईश्वरीय मर्यादाएं नियम पे चल रहे हैं हर एक, इसलिए तो आपस में अपनापन की फीलिंग है ना, भला आप कहां से भी आए हैं, विदेश से आए हैं, इसे आपस में हां हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुलभूषण है, क्योंकि हम उस मर्यादा पे चल रहे हैं, इसलिए एक्यूरेट फैमिली है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूं, यह वर्षा फिर देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। देवी फैमिली सत्युग त्रेता तक चलती है, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के हैं, वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो, सत्युग में आगे था कलयुग, सत्युग के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, बीच में है यह संगम, तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं। तो ये बीच का समय, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कुल, ईश्वरीय फैमिली है। तो बाबा कहते हैं तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया, उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं, यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण, बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, इसलिए बाप आते हैं गोर अंधेरे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, कितना आपस में फेथ बढ़ता है जब हम एक दोनों को रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, तो आपस में एक फेथ बढ़ता है। यह भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा, जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे, वो तो स्थापना पहले करके फिर चले जाएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूं। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूं, यह तुम बच्चे समझ सकते हो। तो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वह चढ़ते हैं। अब ये बात नोट कीजिए, दिल पर भी वह चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड, कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना, स्थूल सेवा भी है, लेकिन फिर भी उस सेवा में बाप को भी याद करना है ना। तो बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहां का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। दुख की बात नहीं होती, इस समय सब नरकवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाती है, इसीलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहां तुमको नशा रहता है, कौन सा नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे, अब ये बात अंडरलाइन करो, लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। हम कहते हैं ना, हाँ बाबा हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपस संबंध में एक परोपकारी रहना, लोगों को अपलिफ्ट करना, गुणों का सहयोग देना, ये दादी जानकी की बहुत बड़ी विशेषता थी। बाबा ने दादी को ये वरदान दिया था, आपस में ब्राह्मण परिवार में स्नेह और सहयोग से रहना। तो बाबा कहते हैं, लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वो देरी से आएंगे, जिनकी फुल पढ़ाई है तो फुल बर्थ होगा, फुल 84 जन्म, जिनकी कम पढ़ाई है वो थोड़ा देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होगा ना। कोई 80 वर्ष, कोई 82, कौन जल्दी आते हैं, कौन पीछे आते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएंगी, उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है, यह गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, सबसे अच्छी बात यह है, बाप जब आते हैं तो सभी का कल्याण होता है। इसीलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है, कल्याणकारी युग है, ऑस्पिशियस युग भी है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सत्युग में सबका कल्याण था, कोई दुख, कोई दुखी नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं, ईश्वर सबका बाप है, यहां ही तुम मात पिता गाते हो ना, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है, यहां तुम बच्चों को मां बाप मिलते हैं, यहां तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होंगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी? हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं? यह है यह न भारतवासी जानते हैं न विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो, अभी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सब कुछ बताते, फिर बच्चों की स्मृति कहां तक लेके जाते पापा? अभी बाप समझाते हैं मां मेकम याद करो, निरंतर याद, निरंतर प्यार, निरंतर सेवा, तीनों का कनेक्शन। इसीलिए बार बार बाप कहते हैं मां मेकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कहा होगा? सुंदर मेला जरूर यहां ही होगा। परमात्मा बाप यहां आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं, शांति धाम तो सब जाएंगे। फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं, धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सत्तो प्रधान से रजो में जब आते हैं, सत्तो प्रधान से जब रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, मतभेद शुरू होती है, मेरा तेरा शुरू होता है। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हो। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सत्युगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रही है ब्रह्मा द्वारा, जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। पहचान, पढ़ाई, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, जितनी ईश्वर की एक्यूरेट पहचान होती है उतनी एक्यूरेट पढ़ाई होती है, जितनी पढ़ाई में एक्यूरेसी होती है उतनी पुरुषार्थ में एक्यूरेसी होती है, तब तो भारी प्रारब्ध मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे फिर उतना ऊंच प्रारब्ध मिलेगा। तो बाबा कहते तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है, बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं और कई इनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, अभी ये बात ध्यान से सुनेंगे, श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने कारण, यह सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसीलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, बुद्धि योग भटकती रहती है, सिचुएशन में फंसती है, परिस्थिति में फंसती है, व्यक्ति में वस्तु में फंसती है। तो बाबा कहते योग कम है इसीलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वो खुशी नहीं रहती है। देखो कितना अच्छा कनेक्शन बाबा ने बताया है, योग नहीं रहता है तो ईश्वर के साथ लव नहीं रहता है, लव नहीं रहता है तो धारणा नहीं होती है, धारणा नहीं होती है तो खुशी में कमी आ जाती है। फिर बाबा कहते हैं खुशी नहीं रहती है, शक्ल ही जैसे मुर्दे मिसल रहती है, रुखे सूखे। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं ना, बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं, कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास आए तो उनको कितनी खुशी होगी, तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने एडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु अभी बाबा बीच में एक परंतु भी डालता है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। बाबा अपने तरफ से तो फुल मेहनत करता है बच्चों के ऊपर, लेकिन बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं, एक पटरानी है जो पट पे बैठने वाले रानी, लेकिन दूसरी पटरानी है जो राजा की जो मुख्य क्वीन होती है ना, जो राजा के साथ सिंहासन पे बैठती है, तो पट्टा माना सिंहासन, तो सिंहासन की रानी पटरानी, तो पटरानी बनते नहीं, बाप आते ही है पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे, भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, भारत में ही बाकी थोड़ी बचते हैं, प्रलय तो होती नहीं परंतु, प्रलय तो होती नहीं परंतु बहुत खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, एक साथ इतने सारे मनुष्य घर चले जाएंगे तो लगता ही है जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। एक बहन आई थी कल मिलने के लिए, कहती है इस साल में मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, तो मेरे आपस में जो स्कूल के फ्रेंड सर्कल है ना, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया था, बहुत मदद की थी मेरी, तो मेरा दिल बहुत लग गया मेरे फ्रेंड्स के साथ। अभी मैं बाबा के घर में भी आई हूं लेकिन उनकी मिसिंग बहुत हो रही है। तो मैंने बोला बाबा के घर में आए हैं, बाबा मात पिता है, आपने अपना दिल अपने फ्रेंड सर्कल को दे दिया। पहले आप अपना दिल बाबा को दे दो, फ्रेंड्स को, सो फिर को फिर जो बाबा से मिली हुई बातें वो सुनाओ, लेकिन फ्रेंड्स को दिल नहीं देनी है, आपस में एक दोनों को दिल नहीं देना है। पहले जो भी बातें हैं दिल में, पहले बाबा को सुनानी है। ये एक लॉ है, तब बाबा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आपने किसी और को सुना दिया ना, पहले बाबा साक्षी हो जाता है। पहले इसका सहारा पकड़ा ना, जाओ। इसलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्ट मोह है नहीं। इसको क्या कहेंगे, नष्ट मोह नहीं है तो कौन सा प्यार होता है, कौन सा प्यार होता है, स्वार्थ वाला प्यार, और कौन सा प्यार होता है? इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। मिक्स चैरिटी है ना, याद में और प्यार में। नष्ट मोह है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। स्ट्रेट बाबा ने बताई है, सदगति को पा नहीं सकते हैं क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरा, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। बाबा ने अव्यक्त, अभी जो 31 दिसंबर की अव्यक्त वाणी जो चली, बाबा ने कौन सी बातें अंडरलाइन की? कड़वापना छोड़ना है ना, मीठा बनना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले, अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भव, महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाती है तो उसमें सब चीजें डालते हैं, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। इसीलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। कितना स्वमान बाबा ऊंचा उठा रहे, देखो। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है, इसीलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हैं, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन, अपनी नेचर को इजी माना सरल बनाओ। अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। नेचर इजी तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। और आज का अव्यक्त इशारा और टाइटल है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आज शांतिवन में वर्तमान समय जो ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय करुणा भाई जी, आपका 87th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। शांतिवन में 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सभी समर्पित भाई बहनों को, सभी कैंपस के सभी समर्पित भाई बहनों को विशेष निमंत्रण है। जिनके पास अपने साधन उपलब्ध है अवश्य ही इस कार्यक्रम के लिए आप जा सकते हैं। शांतिवन से मीडिया डिपार्टमेंट से विशेष निमंत्रण है, कोमल भाई की तरफ से विशेष निमंत्रण है, तो सभी अवश्य इस कार्यक्रम का लाभ ले। ओम शांति।
अच्छा, अभी हमारे बीच में वंडरफुल कलाकार है। भाई का नाम हेमंत आचार्य है, और खास करके 18 जनवरी के लिए भी 3 गीत बनाए हैं, तो अभी सभी के सामने 2 लाइन सुनाएंगे। तो चलो बाबा की बात है, और पीस पार्क के लिए भी गीत पीस पार्क का थीम सॉन्ग अभी लॉन्च करेंगे, और अभी वो थीम सॉन्ग सुनाएंगे।